Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Masis mein agni hai, ye to aapko malum hi hai. Parantu masis ka agni bhi jab tak ghashan nahi karoge, tab tak आपका काम नहीं करेगा. इसी प्रकार एक परमात्मा है और परमात्मा का दो स्वरूप है, देव भावो ब्रह्मण रूपे. ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक स्वरूप होता है मूर्त, एक स्वरूप होता है अमूर्त. आने बात तो मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है? अमूर्त ब्रह्मण रूपम मूर्तम एत चराचरम. ये चर असर जगत जो है ना, ये मूर्त है. मूर्तवाने देखने में आता, व्यवहार करते बात. तो आपका कौन से अग्नि से आप काम लेते हैं? जैसे विशेष अग्नि है, घर्षण के द्वारा प्रकट करते हो. सामान्य अग्नि से तो काम नहीं चलता है ना. ऐसे व्यापकी बुद्ध जो परमात्मा है, सर्वत्र रहता है. अभी समझो तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम सर्वत्र व्यापक है, होने पर भी देखने में नहीं आता. कैसे? तो दृष्टांत तो दिया, जैसे मेहंदी के पात में लालिमा रहती है कि नहीं. आप लोग मेहंदी लगाती हो ना, तो हरा है कि लाल है मेहंदी की पत्ती? तो आप क्यों आप इसको हरा मेहंदी की पत्ती को हाथ में लगाते हैं? लालिमा है तो उसमें लालिमा है, आपको मालूम है, पर देखने में हरा लगता है कि नहीं? तो हरी पत्ती को आप घिस करके जो हाथ में लगाते हैं, उस लालिमा होता है. तुलसी मुहूर्त राम की घट घट रही समाय, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए. कितने बढ़िया बात बताया है. तुलसी मुहूर्त राम की घट घट रही समाय, सब में है. घट माने घट से कर्मणा के घट शरीर, घट कहते शरीर को. सब शरीर में, सब पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव रक्षा रक्षा भूत प्रेत जड़ चेतन स्थावर जंगम अन्य उद्भिद जराय श्रेदा दंडन, जितना भी शरीर देखने में आता है ना, वो सब में एक ही तत्व है. समझे कि नहीं? पर देखने में तो कैसे देखने में नहीं आता है? तो दृष्टांत दिया मेहंदी की पत्ती. मेहंदी की पत्ती में जैसे लालिमा छिपी रहती है, देखने में नहीं आता, फिर भी हम तुलसी के या मेहंदी के पत्ती को घिस करके हाथ में लगाते, इसमें लालिमा आएगी. तो ऐसे भगवान राम सर्वत्र रहता है, सर्वत्र रहता हुआ भी देखने में नहीं आता है. परंतु कब देखने में आएगा? जब साधन के द्वारा तुम सामान्य रूप से विशेष रूप में प्रकट करोगे, तो सामान्य चेतन से विशेष चेतन के रूप में प्रकट करोगे तो. यानी बात सामान्य चेतन व्यापक है, व्यापक चेतन है, व्यापक सर्वत्र रहता है. अगर क्षेत्र देखो, अब बरसात के दिनों में कितना कीड़े मकोड़े पैदा होते, उसमें चेतन आएगी नहीं? करोड़ों किस्म के पैदा होते हैं, पर वो कहां से आया? कुछ बीज भरा है वहां? चेतन यदि उसमें नहीं, गेहूं रखते हो घर में, चावल रखते हो घर में, बादाम काजू रखते हो घर में, वहां कहां से आ जाता है? कोई बीज बोया है वहां क्या? काजू क्यों खाया जाता है? बादाम क्यों खा कर खोखला कर देता है? कौन खाता है? वहां चेतन कहां से आया? कीड़ा कहां से आया? कीड़ा चेतन नहीं है. चावल रखे हो घर में बढ़िया, कितना भी रखो, उसमें कीड़ा पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? क्यों? कहां से आया? चेतन व्यापक ना हो तो चेतन की व्यापकता इसमें सिद्ध हो जाता है. समझ गए नहीं। तो चेतन तो व्यापक है, परंतु जहां जहां उपाधि होगी वहां वहां देखने में आता है, वहां वहां देखने में आता है। चेतन तो व्यापक है, तो व्यापक होता हुआ भी प्रकट कहां होता है? जहां जहां अंतकरण होता है वहां प्रकट होता है। जहां जहां अंतकरण होगा वहां वहां प्रकट होगा। जैसे आकाश में सूर्य है अथवा चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश जमीन में पड़ता है, जमीन में पड़ता हुआ जो चंद्रमा का प्रकाश तो कहां अभिव्यक्त होता है? जहां जल पत्र होगा, जहां दर्पण होगा, जहां स्वच्छ उपाधि होगी। तो जितनी उपाधि होगी करोड़ों अरबों खरबों सब में चंद्रमा देखेगा कि नहीं देखेगा? क्यों, आकाश में कितना है? करोड़ों है, तो करोड़ों करोड़ों क्यों दिखता है? उपाधि के कारण। ऐसी अंतकरण जो उपाधि है, वो अंतकरण किसी का भी है, शेर का हो, बाघ का हो, हिरण का हो, सुअर का हो, गधे का हो, सब उपाधियों में वो चेतन की अभिव्यक्ति होती है। वो चेतन व्यापक है, भूमा है, परंतु उनके जानने के लिए उपाधि चाहिए, जानने के लिए उपाधि चाहिए। जहां जहां उपाधि होगी वहां वो देखने में आता है। चावल है, उपाधि है, उसमें कीड़ा पड़ जाता है तो अंतकरण हुआ था कि नहीं? वहां वो जो जीव है, तुम्हारे शरीर में जो जू पड़ता है, घर में जो खटमल पैदा हो जाता है, ये जो स्वेदस प्राणी है, स्वेद से पैदा हो जाता है, पसीना से पैदा होता है, तो इसमें भी क्रिया शक्ति होती है कि नहीं? और वो भी मरने से डरता है कि नहीं डरता है? जू जो पड़ता है ना, वो खटमल शरीर में जू पड़ता है, जू वो जूहू नहीं, एक जू होता है, जू बोलता है, खून पीने वाला है, राक्षस है, उसको राक्षस कहते हैं, खून पीने वाला को। तो उसको किसने बोया तुम्हारे सीन में, ये बताओ? कहां से लाकर के आकर यहां टपका दिया सीन में? इसीलिए जहां जहां क्रिया होती है, समझ गए, वहां वहां चेतन की अभिव्यक्ति होती है। तो आत्मा दो प्रकार के हैं, नहीं बात, एक सामान्य और एक विशेष। हाँ, एक ही उपाधि के कारण एक विशेष आत्मा, एक सामान्य आत्मा। तो सामान्य आत्मा तुम्हारा सुषुप्ति अवस्था में है, याद रखना, और जागृत में भी है, दोनों में है। जागृत सुषुप्ति में जो आत्मा है, तो उस आत्मा तुम्हारे अज्ञान को नाश करेगा कि नहीं? क्यों, सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा है, आत्मा सर्वत्र है, हमारे भीतर आत्मा है, वो आत्मा हमारे अज्ञान को सुषुप्ति अवस्था में नाश क्यों नहीं कर देता? तो देखो, सामान्य आत्मा, आत्मा जो ऐसा अज्ञान को नाश नहीं करता है। आत्मा अज्ञान को नाश करने के लिए, हमारे दुखों को नाश करने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा। सुषुप्ति अवस्था में तू आत्मा को जानते नहीं, वह उपदेश देने वाला कोई नहीं है। जानोगे कब? कोई आत्मा को बतला देगा तब। आत्मा को बतलाने वाला कब रहेगा? जागृत में रहेगा। जागृत में जब आत्मा विषय ज्ञान करेगा तब तुमसे वाक्य बतला देगा, तब तुम आत्मा को जानोगे। तो आत्मा को जानने से आत्मा विषय जो अज्ञान है, अविद्या है, उसके नाश होगा। उसका नाश होते ही तुम्हारा मोक्ष होगा, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए क्या चाहिए? आत्मा का विशेष ज्ञान चाहिए। सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान सुषुप्ति में है, परंतु वो अज्ञान का नाश नहीं करता। क्यों? अज्ञान के साथ उसका कोई विरोध नहीं है, याद रखना। आश्रय है। सामान्य जो चेतन है ना, सामान्य चेतन का हो, सामान्य आत्मा का हो, ब्रह्म का हो, ये उसका साथ अज्ञान का विरोध नहीं है। क्यों? अज्ञान उसे ब्रह्म के आश्रय में रहता है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग स्थितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमस ही पश्चिम भवते कथम गोसर। आश्रय अज्ञान के आश्रय और विषय दोनों जो है ना शुद्ध चेतन ही है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चेतन केवला, निर्विभाग जो चेतन, विभाग माने चेतन का विभाग होता है ना, कैसे आश्रय भी है विषय भी है। हाँ, जिस आश्रय में, जिसके जिस दीवार के आश्रय में अंधकार रहता है तो उसके आश्रय भी है और उसको विषय भी करता है, ढकता भी है। विषय करने माने ढकना। दीवार तुम्हारे दीवार, तुम्हारे दीवार के आश्रय में अंधेरा रहता है कि नहीं रहता है, तो दीवार को ढकता है कि नहीं ढकता है? विषय करता है, ढक दिया। आश्रय भी दीवार ही है। ऐसी सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान रहता है, अज्ञान का आश्रय भी और विषय भी, पर अज्ञान को मिटाता नहीं। अज्ञान को मिटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, याद रखना। वो तो होगा तुमको जागृत अवस्था में ही, ना समाधि में होगा, तुम समाधि लगाने जाओ वहां भी नहीं होगा, मूर्छा अवस्था में भी नहीं होगा और निद्रा सुसुप्ति में भी नहीं होगा। ये होगा केवल जागृत अवस्था में। क्यों? जागृत अवस्था में तुम चिंतन कर सकते हो अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म चिंतन कब करोगे? जागृत अवस्था में ही करोगे। तो अविद्या का नाश तो जागृत अवस्था में करना पड़ेगा। इसीलिए सुसुप्ति अवस्था में जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति न होकर के केवल निवृत्ति होती है, याद रखना। क्या जो जागृत अवस्था में सुख दुख हर्ष शोक आदि है ना, ये सब सुसुप्ति में नहीं रहता है। सुसुप्ति में लय हो जाता है, नाश नहीं होता है सुसुप्ति में। जैसे देखो आभूषण बनाते कि नहीं, आभूषण सोने का कटक कुंडलादि हार सूर्यादि सब बनाते हैं, तो नाम रूप है ये आप इस चूड़ियादि जो है ना, आप लोग दागिना बनाते हो, दागिना पसंद नहीं है तो सुनार के पास ले जाते हो कि नहीं, तो दूसरा बनाने के लिए तो इसे गला करके फिर पिंड बना देता है, पिंड बनाता है कि नहीं? तो उस अवस्था में तुम्हारा चूड़िया कहाँ चली गई, हार कहाँ गया, बीटी कहाँ गई? लय हो गया, सोना में चला गया, कारण में चला गया। परंतु उस कारण से फिर बनाते कि नहीं सुनार? जैसा डिजाइन तुम दिखाते हो ऐसा डिजाइन में फिर बना देता है, बनाता है कि नहीं? बनाता है। तो कहाँ से आया ये डिजाइन, ये जो हार कटक कुंडलादि फिर कहाँ से आया? तो सोना में पहले जो दागिना थे सोना में लय हुआ था, नाश नहीं हुआ, उसी सोना से फिर जो है ना बना करके आपको दिखा दिया, फिर आया कारण से कार्य की फिर अभिव्यक्ति हो गई। ऐसे समझना सुसुप्ति अवस्था जागृत अवस्था। सुसुप्त अवस्था में जो जागृत का जो सुख दुख आदि है, जागृत का जो सुख दुख हर्ष शोक आदि है ना, सुसुप्ति में नहीं रहता है। सोने जाते हैं ना हम लोग, सो जाते हैं, सो जाने के बाद में नहीं रहता है, है नहीं बात? तो आप कहोगे मिट गया सब, लय हुआ, कार्य कारण में लय हुआ। सुसुप्त काले सकले बिलीने तमो विभूत सुख रूप मेटी। उस अवस्था में जीव सुखात्मक रहता है, सब बिलीन हो जाता है। पर जागृत अवस्था में फिर अंतकरण से बाहर आ जाता है तो अंतकरण का धर्म फिर तुम्हारे को सुख दुख हर्ष सुख आदि देता है। सुसुप्ति में ये सब कहाँ चले जाते हैं? अंतकरण में लीन होता है। अंतकरण अपने कारण अविद्या में लीन हो जाता है, तो जागृत अवस्था में फिर अंतकरण आ जाएगा, तो अंतकरण जब आ जाएगा तो अंतकरण का धर्म भी, ये सुख दुख आदि किसका धर्म है? अंतकरण का धर्म कहो, मन का धर्म कहो, निश्चयात्म बुद्धि का कहो, मान बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का नाम अंतकरण है। आनी बात तो ये जो है ना, सुषुप्ति काल में अत्यंतिक नाश नहीं होता है, केवल नाश होता है। और इसको जब अत्यंतिक नाश करना सुषुप्ति में समाधि में नहीं होगा, इसे जागृत में करना पड़ेगा। जागृत में कैसे करना पड़ेगा? ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान के नाश, अविद्या निवृत्तिर मोक्ष, अज्ञान निवृत्तिर मोक्ष। तो अविद्या की निवृत्ति विद्या से होगी, ज्ञान से होगा। जतो धांग से समिध्योग ने भस्मसात कुरुति अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति तथा। ये क्या कि नहीं बता गीता में भगवान ने, ज्ञान अग्नि क्या करेगा? सर्वकर्माणि, कर्म का नाश करना। देखो हमने अभी बताया कर्म के साथ अविद्या के साथ, कर्म के साथ उसका विरोध नहीं है, ज्ञान का विरोध कर्म के साथ नहीं है, ज्ञान का विरोध अज्ञान के साथ है, याद रखना। हाँ, ज्ञान और अज्ञान का विरोध है, कर्म के साथ विरोध नहीं है। कर्म तक ज्ञान होने के बाद भी कर्म करता है, ज्ञानी लोग कर्म करता है कि नहीं? ज्ञान होने के बाद भी तो बाधित रूप से है ना, कैसे भी हो कर्म तो करता है। तो कर्म के साथ विरोध नहीं है, विरोध है किससे? अज्ञान का, ज्ञान से है कहो ना, क्यों? ज्ञान अज्ञान को नाश कर सकता है, नहीं बात? अविद्या का ज्ञान को ढक देगा। ज्ञान है ना, अज्ञान है ना, अभितम ज्ञान हम तेना मोहयंती जनता, ये हम तो मोहित हो रहे हैं संसार में व्यवहार में, क्यों? अज्ञान ने हमारे ज्ञान को आवृत कर दिया, ढक दिया। वो कैसे? जैसे आकाश में सूर्य है, सूर्य को बादल ढक देता है, ऐसे हमारे ज्ञान को, तो ऐसे अविद्या के आवरण को हटाने के लिए आपको वेदांत वाक्यों का बार बार श्रवण करना पड़ता है, बार बार मनन करना पड़ता है। ये बार बार श्रवण मनन के द्वारा ही अन्य नाश करते हैं ना, साधन संपन्न होता है। तो अत्यंतिक नाश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अविद्या का नाश, अविद्या का, अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। तो अज्ञान का नाश ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है ना, लय हो जाता है, तो कर्म का नाश हो। सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का नाश नहीं होता, याद रखना। अज्ञान रहता है, क्यों? जागृत में आप बोलते हो ना, सुषुप्ति अवस्था में आप सोए थे, कैसे सोए? एक रोगी से पूछता है एक स्वस्थ आदमी, रात्रि को नहीं जाए? बोले आई है। कैसे नहीं जाए? बड़े बढ़िया मजा में नहीं जाया। न किंचित अभी दिशम सुगम अवसम, मैं सुख से सोया। आप तो सुख का अनुभव किया और अज्ञान का भी अनुभव किया कि नहीं? सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान का भी अनुभव हुआ, न किंचित अभिदिशम, ये अज्ञान का ज्ञान रहा, और सुख से सोया ये सुख का ज्ञान रहा। तो ज्ञान अज्ञान दोनों सुसुप्ति में रहा, समझे कि नहीं? ज्ञान अज्ञान का भी आप ज्ञाता रहे और सुख का भी ज्ञाता रहे। अगर सुख का अनुभव नहीं करता, प्रत्यभिज्ञा नहीं होता। प्रत्यभिज्ञा समझ रहे हैं ना, अनुभव प्रत्यभिज्ञा। हाँ, तो आपने सुख अनुभव किया सुसुप्ति अवस्था में, तब तो जागृत में बोलोगे ना, मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला, यानी मैं स्वयं देवदत्ता जो मैं दृष्टा अहमदाबादी, वही देवदत्ता जिसको मैंने पहले अहमदाबाद में देखा था, ये वही सुख है जो सुसुप्ति अवस्था में मैंने अनुभव किया था, बड़े आनंद से सोया था। हरि ओम पूर्णमद पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।
केशवं वाजराज शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि यो मम व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।